শান্তি। আজকে প্রাতঃকাল মে জীবন কে উস পরম সত্য সে আপ সভি পরিচিত হোনে যা রহে হ্যাঁ, জিস পরম সত্য কো জাননে কে লিয়ে হাজারো সালো সে ইনসান প্রয়াস করতা রহা হ্যাঁ। ইয়ে তো হম সব জানতে হ্যাঁ কি পরমাত্মা ও পরম শক্তি হ্যাঁ, জিসে হমে সদা কাল কে সুখ শান্তি আর শক্তি প্রাপ্ত হতি হ্যাঁ। আর ইসলিয়ে ভক্তি মে হম সদা গাতে রহতে হ্যাঁ কি বহি সবকা সহারা হ্যায় রখওয়ালা হ্যায়। জব মনুষ্য চারো ওর সে ধোখা খাতা হ্যায় দুঃখী হো জাতা হ্যায় অসহায় বন জাতা হ্যায়, কোই বিকট পরিস্থিতি আ জাতি হ্যায়, কোই সহারা নহি রহতা হ্যায়, তব ও কিসকো ইয়াদ করতা হ্যায়, কিসকি শরণ মে জাতা হ্যায়। ভগবান কি শরণ মে জাতে হ্যায়, উসে ইয়াদ করতে হ্যায় কি আব তো আপ হি হামারে আধার হ্যায়। লেকিন ও পিতা পরমাত্মা কৌন হ্যায়, উসকা সহি পরিচয় ক্যা হ্যায়, ও হম নহি জানতে হ্যায়। মুঝে ইয়াদ হ্যায় হম প্রাইমারি স্কুল মে পড়তে থে তো গুজরাতি মে হমে এক কবিতা আতি থি আর উসমে ইয়ে কহতে থে কি মুঝে বতাও না কি পরমাত্মা কৌন হ্যায়, ও কহাঁ রহতা হ্যায়, ক্যা করতা হ্যায়, মুঝে বতাও না পরমাত্মা কৌন হ্যায়। হম ইয়ে কাব্য গাতে রহতে থে, শিক্ষক ভি গওয়াতে রহতে থে, লেকিন উসকা উত্তর কোই ভি নহি দে পাতা থা। হরেক আপনি ভাবনা অনুসার জিসকো জিসমে বিশ্বাস হ্যায় শ্রদ্ধা হ্যায় ও উসে ভগবান সমঝ কর ইয়াদ করতে রহতে হ্যায়। জিসকো শ্রীরাম সে প্যার হ্যায় ও শ্রীরাম কো হি ভগবান সমঝতে হ্যায়, জিনকো শ্রীকৃষ্ণ সে প্যার হ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণ কো হি পরমাত্মা সমঝতে হ্যায়। কোই হমারে আসপাস জো প্রাকৃতিক জগত হ্যায় উস নেচর কে লিয়ে কহতে হ্যায় কি নেচর হি গড হ্যায়। কই হ্যায় জো আপনে আপ কো ভগবান কহলাতে হ্যায়, হম হি ভগবান হ্যায়। কই ইয়ে ভাবনা রাখতে হ্যায় কি সব মে ভগবান হ্যায়, এক পরমাত্মা কে বারে মে অনেক মান্যতায় হ্যায়, ইয়ে সির্ফ এক ধর্ম কি বাত মেনে কহি, বিশ্ব মে লাখো ধর্ম সম্প্রদায় হ্যায়, मतपंथ है, हरेक की अपनी अपनी मान्यता है। कहने का भावार्थ ये है कि परमात्मा का विषय प्राचीन होते हुए भी उलझा हुआ है। अगर मैं आप सबसे भी पूछूं कि परमात्मा कौन है तो क्या एक उत्तर मिलेगा? हर एक अपनी मान्यता अनुसार, अपने विश्वास श्रद्धा के अनुसार उत्तर देंगे। इसलिए कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, तुंडे तुंडे मतीर भिन्ना, हरेक के अपने मत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमात्मा का विषय हम सबके लिए ऐसा उलझा हुआ है जैसे चार अंधों के लिए हाथी का विषय था। कहानी आप सबने पढ़ी होगी, चार अंधों से पूछा गया हाथी कैसा है। चारों ही उत्तर देते हैं, एक अंधा हाथी के पांव को स्पर्श करता है और बताता है कि हाथी खंभे जैसा है। एक ने पूंछ को हाथ लगाया तो कहा हाथी तो रस्सी जैसा है। एक ने पेट पर हाथ घुमाया तो कहता है हाथी तो दीवार जैसा है। एक ने कान को हाथ लगाया तो कहा हाथी तो सूप जैसा है। चारों ने हाथी का परिचय दिया लेकिन उसमें से एक भी सत्य नहीं, पूर्ण नहीं। तो परमात्मा के विषय में जो कुछ ज्ञान हम सबकी बुद्धि में है, या तो हमने वो शास्त्रों से प्राप्त किया है, ऋषि मुनि साधु संतों से प्राप्त किया है, या हमें अपने परिवार की परंपरा से जो जानकारी मिली है वो हमारी बुद्धि में है। मीन्स मनुष्यात्माओं ने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी साधना की स्थिति अनुसार, जिसने जैसा जहां तक जो अनुभव परमात्मा के बारे में किया, वो विचार हमारे सामने रखे हैं। इसलिए अनेक विचार है, अनेक मते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस की अपनी मान्यताएं हैं, तो श्री अरविंदो का अपना चिंतन है, श्री शंकराचार्य जी ने अपनी विचारधारा बताई है, तो वल्लभाचार्य का अपना कहना है। समय प्रति समय इस संसार चक्र के अंदर जो भी धर्मात्मा, महात्मा, अध्यात्म पुरुष इस संसार में आए हैं, उन्होंने अपने अपने अनुभव की बातें हमारे सामने रखी हैं। इसलिए अनेक विचारधाराएं हो गई हैं, प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसलिए ही स्पष्ट कह दिया था कि ईश्वर अनंत है, हम उनके अंत को नहीं पा सकते हैं। इन्होंने स्पष्ट इकरार कर दिया कि नेति 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 मीन्स न इति न इति न इति, यह नहीं यह नहीं यह नहीं, हम नहीं जानते हैं। तो यहां हमें सार रूप में दो बातें अपनी बुद्धि में स्पष्ट कर लेनी चाहिए। एक बात कि परमात्मा का सही परिचय कोई मनुष्यात्मा नहीं दे सकती है। अगर दे सकती थी तो हमें कब से प्राप्त हो जाना चाहिए था, जब द्वापर के रजो प्रधान ऋषि मुनि भी उसका परिचय प्राप्त नहीं कर सके तो कलियुगी तमो प्रधान मनुष्यात्माएं उस परम शक्ति को कैसे पहचान सकेंगे। इसलिए एक निर्णय हमें ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि कोई भी शरीरधारी मनुष्यात्मा परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं दे सकती है। और दूसरी बात ये स्पष्ट हो रही है कि अंडरस्टूड है परमात्मा का सही परिचय स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं, इसलिए तो वो आते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि भक्ति का फल देने के लिए स्वयं भगवान सृष्टि पर आते हैं। तो भक्ति है भावना, श्रद्धा, मान्यता, वो हमारी बुद्धि के प्रयास है और हमारी मेहनत का फल स्वयं भगवान सृष्टि पर आते हैं और सत्य ज्ञान देते हैं। वैसे भी हम कहते हैं कि सत्य स्वयं प्रकट होता है, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता है, सत्य स्वयं सिद्ध है। परमात्मा परम सत्य है, वे स्वयं सृष्टि पर आते हैं और अपना सत्य परिचय हम मनुष्यात्माओं को देते हैं। प्रश्न आपको अब ये उठेगा कि स्वयं परमात्मा कैसे सृष्टि पर आते हैं, कब आते हैं, और मान लो वे आए हुए हैं तो हम उन्हें पहचानेंगे कैसे। बहुत सहज बात है, परमात्मा जैसी परम शक्ति इस सृष्टि पर आएगी, अवतरित होंगी, तो जरूर उनकी भी कोई पूर्व निशानियां होगी ना। आज हमारे शहर में कोई विशेष हस्ती भी आने वाली होती है तो हमें उसकी पूर्व निशानियां दिखाई देती हैं। कोई बड़ा राजनेता, अभिनेता, कोई धर्म नेता आने वाला होता है तो चारों ओर उसका प्रचार होने लगता है, बैनर लगते हैं, पोस्टर छपते हैं, वो माहौल हमें बताता है कि कोई विशेष व्यक्ति आने वाली लगती है। इवन प्रकृति जगत में भी आप देखिए, एक सामान्य प्राकृतिक परिवर्तन की भी पूर्व निशानियां होती हैं, उनके भी पूर्व संकेत होते हैं। सुबह होने वाली होती है तो आकाश में लालिमा छाने लगती है, दिन से रात होने वाली होती है तो धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, बारिश होने वाली होती है तो ठंडी हवा बहने लगती है, बादल उमड़ने लगते हैं। एक सामान्य प्राकृतिक परिवर्तन या कोई व्यक्ति विशेष का आगमन भी उनकी पूर्व निशानी हमें दिखाता है, तो स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आएंगे तो जरूर उनकी भी तो कोई पूर्व निशानियां होगी। ये विवेक की बात है कि जब तक मनुष्यात्माओं की शक्ति से ये संसार चल सकता है तब तक परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे कोई साधारण बीमारी हुई हो तो हम एक जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर से दवाई लेकर अपनी बीमारी को ठीक करते हैं, हम डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं पहुंच जाते। जब देखते हैं कि भाई एक साधारण व्यक्ति से नहीं हो रहा है, तब हम उसकी हायर ऑथोरिटी से कांटेक्ट करते हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्यात्माओं की शक्ति महात्माओं की शक्ति धर्मात्माओं की शक्ति इस संसार को चला सकती है, तब तक परमात्मा को सृष्टि पर आने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन जब इस सृष्टि पर अनेक महात्माएं, धर्मात्माएं, पुण्यात्माएं, देवात्माएं हो जाने के बाद भी ये विश्व जब दिन प्रतिदिन गिरता ही जाता है, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक रूप से संसार का पतन ही होता रहता है, तब अंत में आखिरकार वो परम शक्ति परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसलिए परमात्मा के अवतरण का कौन सा समय हम गायन करते हैं, कौन सा समय गायन करते हैं? हाँ? कौन सा श्लोक बोलते? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानीर भवति भारत। हम कहते हैं ना कि जब अति धर्म ग्लानी होती है, अधर्म का अति फैलावा होता है, तब उस अति का अंत करने के लिए वो परमात्मा पिता सृष्टि पर अवतरित होते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि धर्म की अति ग्लानि कब होती है? कब होती? हाँ, कलियुग के अंत समय। कलियुग का अंत अति धर्म ग्लानि का समय, न कि द्वापर का अंत, न कि त्रेता का अंत। कलियुग का अंत अति धर्म ग्लानि का समय है, और इसलिए आप सबको यहां बुलाकर हमें विशेष यही संदेश आप सबको देना है कि वर्तमान समय ही कलियुग का अंत समय, यही अति धर्म ग्लानि का समय है, जबकि स्वयं परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर साधारण मानव तन ब्रह्मा तन में प्रवेश कर वो हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं। अब स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से अपने सत्य परिचय की जो परिभाषा हमें सुनाई है, प्रथम में परिभाषा आपके सामने रखूंगी कि परमात्मा का सही परिचय किसको कह सकते हैं। परमात्मा के सत्य परिचय की व्याख्या क्या है, तो मैं 5 बातें आपको बताऊंगी। परमात्मा के सत्य परिचय की डेफिनेशन की ये 5 बातें हैं। पहली बात, परमात्मा उसको कहेंगे जिसे सर्व धर्म की आत्माएं मान्य करें। परमात्मा का सही परिचय हम उसे कहेंगे जिसे विश्व के मुख्यतः सभी धर्म स्वीकार करें, क्योंकि परमात्मा कोई एक धर्म, कोई एक जाति, कोई एक समाज, कोई एक देश के पिता नहीं। परमात्मा समग्र विश्व के पिता है, सर्व धर्म की आत्माओं के पिता है। इसलिए कुछ लोग माने और कुछ न माने उसको परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा उसे कह सकते हैं जिसे विश्व के मुख्यतः सभी धर्म स्वीकार कर, अर्थात जो सर्वमान्य हो। दूसरी बात, परमात्मा उसको कहेंगे जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हो। क्योंकि हम सब जानते हैं जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी अवश्य होती है। संसार चक्र का ये अनादि क्रम है। जो शरीर लेते हैं वो शरीर छोड़ते भी, जो जन्म लेते हैं वो कर्म बंधन में बंधते हैं, वो देह संबंध में बंधते हैं, वे सुख दुख के बंधन में बंधते हैं, वे प्रकृति के नियम से बंधते हैं। इसलिए परमात्मा उसको कहेंगे जो जन्म मरण के, सुख दुख के, देह संबंध के, कर्म के, प्रकृति के बंधन से न्यारे हो। इसलिए हम उसे कर्मातीत कहते हैं। हम सभी भगवान से मुक्ति मांगते हैं, हे भगवान हमें दुख से छुड़ाओ। इतने तक हम भगवान से कहते हैं कि हमें भी इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दो। तो अंडरस्टूड है ना कि जो स्वयं मुक्त होगा वो ही तो हमें मुक्त कर सकेगा। इसलिए परमात्मा के लिए हम सदा गाते हैं कि वे सदा मुक्त है, सदा स्वतंत्र है। तीसरी बात, परमात्मा उससे कहेंगे जिनके कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं है। क्योंकि परमात्मा से ऊपर और कोई आत्मा नहीं है जो उनके माता पिता गुरु शिक्षक बन सके। वे स्वयं ही परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। अर्थात जो सर्वोपरि है, जिनके ऊपर और कोई आत्मा नहीं। चौथी बात, परमात्मा उससे कहेंगे जिनके परम गुण, परम स्थिति, परम कर्तव्य सदा एक रस, अपरिवर्तनशील हो। जिनके गुण बदलते रहते हों, स्थिति बदल जाती हो, कर्म बदलते हो, उसे परमात्मा नहीं कह सकते। जैसे कल मॉर्निंग के लेसन में आप सबने समझा है कि हम आत्माओं के गुण, कर्म, स्थिति, बदल जाते हैं। ओरिजिनली हम सभी आत्माएं कैसी हैं? शुद्ध है, पवित्र है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। हर एक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, श्रेष्ठ है, लेकिन समय और प्रकृति के संसर्ग में आकर आज हम आत्माओं के गुण, स्थिति, कर्म बदल गए हैं। आज हम दुखी, अशांत, पतित बन गए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा सतो रजो तमो स्थिति से पास होती है। परमात्मा उससे कहेंगे जो सदा परम, सर्वोच्च, अपरिवर्तनशील एक रस है। और पांचवी बात, परमात्मा उससे कहेंगे जो सर्व ज्ञाता है और सदा दाता है। जो सर्व ज्ञाता है मीन्स जो सब कुछ जानते हैं, जो ज्ञान के सागर है, जिसे हम नॉलेजफुल कहते हैं, जो संसार के आदि मध्य अंत को जानते हैं, जो सारी ही यूनिवर्सल ट्रूथ्स को जानते हैं, जो आकर सब सत्यों का ज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि वो सर्वज्ञ है। आत्माओं के लिए क्या कहते हैं? अल्पज्ञ है। मनुष्य आत्माओं के पास लिमिटेड नॉलेज है। हम स्मृति विस्मृति को प्राप्त होते हैं और वो सदा दाता है। सदा दाता है, देते ही रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो शांति दाता है, सुख दाता है, सद्गति दाता है, दिव्य बुद्धि विधाता है। वो सदा देते ही रहते हैं। हम मनुष्य आत्माएं सदा दाता नहीं है। बेशक हम मनुष्य आत्माएं पहले दाता थी, देवता थी। देवता मीन्स देने वाला, दाता। इसलिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं? दाता, वरदाता। हमारी संस्कृति देव संस्कृति, दाता संस्कृति। लेकिन आज हम देवता नहीं रहे हैं। आज तो हम क्या बन गए हैं? क्या बन गए? लेवता। लेवता बन गए, लेने वाले। हमें सबसे चाहिए, हमें सबसे अपेक्षा रहती, कुछ देते हैं तो भी अंदर इच्छा रहती। तो परमात्मा के सही परिचय की इस परिभाषा को बुद्धि में रखते हुए अब हम विवेक से निर्णय करेंगे कि सही अर्थ में किसको परमात्मा कह सकते। हम तो अनेकों को भगवान मानते रहे, समझते रहे, अनेकों को याद करने में कहीं भी एकाग्र नहीं हो सके। लेकिन इस परिभाषा के अनुसार अब मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप और मेरे जैसे जो साधारण मानव शरीरधारी मनुष्यात्माएं हैं, क्या उसे परमात्मा कह सकते हैं? कह सकते हैं? हाँ बहने, नहीं। हम मनुष्यात्माएं स्वयं भगवान को खोजती हैं, उसे याद करती हैं, हम उनसे प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने आप को भगवान कैसे कह सकते? मनुष्यात्मा परमात्मा की याद से महात्मा बन सकती है, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा बन सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं बन जाती है। जैसे एक बच्चा अपने पिता जैसा रूपवान, गुणवान, बुद्धिवान, विद्वान, धनवान, बलवान बन सकता है, फिर भी पिता पिता है और पुत्र पुत्र है, रचयिता रचयिता है, रचना रचना है। वो पिता जैसा बन सकता है, पिता ही नहीं बन जाता। ऐसे हम मनुष्यात्माएं भी परमात्मा की याद से उनके जैसे बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा ही नहीं बन जाते। परमात्मा कोई पोस्ट, पोजीशन या डिग्री नहीं है जो मेहनत करके हम ले लें। परमात्मा कोई बनता नहीं है, अनादि अविनाशी एक परम आत्मा है ही। कोई नए परमात्मा तैयार नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहली बात हम बुद्धि में ये स्पष्ट कर ले कि कोई भी मनुष्यात्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। दूसरी बात स्पष्ट है कि जो भी साधु संत, ऋषि मुनि, गुरु गोसाई, विद्वान पंडित, आचार्य, संत महंत जो भी हैं, हम उन्हें महात्मा कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। जबकि हम सब जानते हैं कि परमात्मा को याद करके ही वे महान बनते हैं। ऐसी कोई योग साधना करके ही वे महान बनते हैं। इसलिए बेशक वे महात्माएं हैं लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा का सही ज्ञान न होने के कारण हम थोड़ी भी रिद्धि सिद्धि चमत्कार देखते हैं तो उससे भगवान का अवतार समझने लगते हैं। और सत्यता ये है कि परमात्मा कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा है कि जो छोटे जादूगर होते हैं वे छोटे छोटे जादू करते, परमात्मा महान जादूगर है, वो छोटी मोटी अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार जादू नहीं करते हैं। वो हमारे जीवन की कोई एक बात ठीक नहीं करते हैं, वो हमारे समग्र जीवन को श्रेष्ठ बना देते। तीसरी बात, जो भी धर्मात्माएं इस सृष्टि पर हुए हैं, जिन्होंने इस संसार में आकर मुख्य मुख्य धर्मों की स्थापना का कार्य किया, पता है ना कौन कौन धर्म स्थापक हुए हैं, कौन कौन हुए हैं? अब्राहम है जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना, गौतम बुद्ध है जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना, जीसस क्राइस्ट है जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना, महावीर स्वामी जी है जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना, गुरु नानक जी है, मोहम्मद पैगंबर है, श्री शंकराचार्य है, जिन्होंने इस संसार में आकर मुख्य धर्मों की स्थापना का कार्य किया। हम उन्हें धर्मात्मा कहेंगे, परमात्मा नहीं। और इन सभी धर्म स्थापकों ने स्वयं ही स्पष्ट कहा है कि हम उस गॉड के मैसेंजर, हम तो उस खुदा के पैगंबर है, हम परमात्मा के पुत्र हैं। उन्होंने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा है। ये तो उनके फॉलोवर्स होते हैं जो अपनी भावना से उनको भगवान मान लेते हैं। इन धर्म स्थापकों ने स्वयं अपने को परमात्मा नहीं कहा है। इसलिए हमें स्पष्ट हो कि वे धर्मात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। और चौथी बात जो हमें और विवेक से समझनी है, जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, जिनका गायन वंदन नमन करते हैं, वो जो भी देवी देवताएं हैं, चाहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश है, श्री लक्ष्मी नारायण है, श्री राम सीता है, श्री राधे कृष्ण है, अंबा दुर्गा सरस्वती है, जिन भी देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं वे देवात्माएं हैं, परमात्मा नहीं। इसलिए देवी देवताएं अनेक दिखाते, परमात्मा तो एक ही है। और इन देवी देवताओं को सभी धर्म वाले नहीं मानते। आप यूपी बिहार साइड जाइए, राम के चुस्त भक्त कृष्ण को नहीं मानेंगे। इन देवी देवताओं को हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय भी नहीं मानते हैं। सारे विश्व के सभी धर्मों के मानने की तो बात ही दूर है। हम इन देवी देवताओं के जन्म दिखाते हैं, उनके जीवन की कहानियां बताते हैं, हम उनके माता पिता गुरु शिक्षक सखा बंधु बताते हैं, हम इन देवी देवताओं को श्रेष्ठ कर्म दिखाते हैं, श्रेष्ठ कर्म के फल स्वरूप उन देवताओं को राजाई भोगते हुए दिखाते हैं। इसलिए हम राजा राम कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। तो जो भोगता है उसे परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा के लिए कौन सी महिमा के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं? कि वो अजन्मा है, अकर्ता, अभोक्ता, वो निराकार निरंजन है। हम इन शब्दों से उनकी महिमा करते हैं। तो ऐसा कौन सा स्वरूप है जो विश्व के सभी धर्मों को मान्य है, जिनको स्वयं भू दिखाया है, जिनके कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं बताए हैं, ऐसा कौन सा स्वरूप है? कौन सा स्वरूप है जो सभी धर्मों को मान्य है? ऐसा कौन सा स्वरूप हो सकता है? इसमें मुंझने की कोई बात नहीं है। परमात्मा को समझना बहुत सहज है। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है, कोई गहन फिलॉसफी नहीं। परमात्मा शब्द ही परमात्मा का परिचय देता है। परमात्मा मीन्स परम आत्मा, सुप्रीम सोल। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, क्योंकि है वो भी आत्मा, है वो भी आत्मा। वे अपने गुण और कर्म से परम है, इसलिए परमात्मा कहते। परमात्मा रूप से परम नहीं है, वे अपने गुण और कर्म से ऊंचे ते ऊंचे है, इसलिए कहते हैं कि रूप से ज्योति बिंदु लेकिन गुणों से है सिंधु। ऐसे गाते हैं ना, है सभी आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, लेकिन जो आत्मा गुण और कर्म से महान है उसको हम महात्मा कहते। महात्मा का अर्थ ये तो नहीं है ना कि वो इतनी मोटी आत्मा, और हम ज्योति बिंदु आत्मा है, नहीं है, वो भी ज्योति बिंदु आत्मा, मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा, लेकिन मैं गुण और कर्म से साधारण हूं, तो मैं साधारण मनुष्य आत्मा। जो गुण और कर्म से महान है उसको महात्मा कहते, जो गुण और कर्म से दिव्य है उसे देवात्मा कहते, जो गुण और कर्म से पतित है उसे पापात्मा कहते हैं, लेकिन है तो ज्योति बिंदु आत्मा ना। तो परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन वे अपने गुण और कर्म से ऊंचे से ऊंचा है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। और इस चित्र में बताया है कि ज्योति बिंदु परमात्मा को विश्व के सर्वधर्म मान्य करते हैं। हिंदू भाई बहने ज्योति बिंदु परमात्मा को ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। शिवलिंग तो देखा है ना, ज्योतिर्लिंग भारत में 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। ज्योति बिंदु परमात्मा की यादगार प्रतिमा को ज्योतिर्लिंग शिवलिंग कहते हैं। परमात्मा इतने बड़े लिंगाकार नहीं है, ये उसकी यादगार प्रतिमा है जो पूजा के लिए भक्ति में बनाई गई। इसलिए आप देखिए, रामेश्वर में श्री राम को भी शिव का पूजन करते हुए दिखाते हैं। राम के भी ईश्वर ज्योतिर्लिंग को दिखाते हैं। इवन वृंदावन गोपेश्वर में आप जाएंगे, श्री कृष्ण को भी शिवलिंग के आगे नमन करते हुए दिखाते हैं। आपने कई चित्रों में देखा होगा, कई मंदिरों में देखा होगा, शंकर को भी शिवलिंग के आगे ध्यान अवस्था में दिखाते हैं, तपस्या करते हुए दिखाते हैं। ये विवेक से सोचने की बात है कि शंकर स्वयं भगवान हो तो उसे किसका ध्यान करने की आवश्यकता है। परमात्मा से ऊपर तो कोई शक्ति नहीं है जिसका ध्यान करना पड़े। शंकर तपस्या करते हैं, मीन्स उनसे भी ऊपर कोई परम शक्ति है, उस परम शक्ति को ही परमात्मा कहा जाता है। इसलिए अमरनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इवन नेपाल में पशुपतिनाथ, भारत में हर स्थान पर, हर गांव गली, इवन जंगलों में भी शिवालय पाए जाते हैं। जो मुस्लिम भाई बहने हैं, शिवलिंग आकार के ही प्रतीक को रिस्पेक्ट देते हैं, उस प्रतीक को वे संग ए अस्वद कहते हैं। जब वो मक्का हज करने जाते हैं, वहां पवित्र काबा की इमारत है और उसमें ये प्रतीक है, शिवलिंग अंगूठे आकार का प्रतीक है जिसको वे संगे अस्वद कहते हैं, उसको चूमते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और वे कहते हैं कि अल्लाह नूर है, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, नूरे इलाही कहते हैं। परमात्मा ये भौतिक प्रकाश नहीं है, इलाही मीन्स खुदाई, अलौकिक प्रकाश रूप है। जापान के जो बौद्धिस्ट हैं, वे भी शिवलिंग आकार के प्रतीक से ध्यान केंद्रित करते हैं, उस प्रतीक को वे शांति दाता कहते हैं, अपनी भाषा में उसे चिनकान शेकी कहते हैं। गुरु नानक जी ने स्पष्ट रूप से उस एक निराकार की महिमा की है। उन्होंने कहा है कि एक ओमकार, एक निराकार, एक सतनाम, एक कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत। क्राइस्ट ने भी स्पष्ट कहा है, गॉड इज लाइट। इवन आप पारसी भाई बहनों को देखिए, परमात्मा के ज्योति स्वरूप की यादगार वे आतश अग्नि की पूजा करते हैं। यहूदियों के हजरत मूसा को सबसे पहला साक्षात्कार ज्योति का हुआ था। विश्व के जो भी मुख्यतः धर्म है और इन धर्मों के जो स्थापक है, सबका मूल इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनको हमारे जैसा शारीरिक स्वरूप नहीं है, प्राकृतिक स्वरूप नहीं है, इसलिए उसे निराकार कहते हैं। उनका अपना दिव्य आकार है ज्योति बिंदु स्वरूप। इसलिए हमें बुद्धि में यह स्पष्ट कर लेना है कि जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मेरे अविनाशी पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। अंतर ये है कि परमात्मा सर्वगुण और सर्व शक्तियों के सागर है। चित्र में ये परमात्मा के गुणों का वर्णन किया हुआ है, जो भक्ति में भी हम करते हैं कि वो प्यार का सागर है, शांति का सागर है, जो दुख हरता सुख करता है, सर्वशक्तिमान है, सर्व के सद्गति दाता है, दिव्य बुद्धि विधाता है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, ये सारी उनके गुणों की महिमा लिखी हुई है। तो ऐसे सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर, कल्याणकारी सदा पावन ऑल माइटी परमात्मा के हम बच्चे हैं। हमें नशा है? है? नहीं है। आज दुनिया में कोई सामान्य एक डॉक्टर, ऑफिसर, मिनिस्टर के बेटे को भी नशा होता है कि मेरे पिता उद्योगपति है, ऑफिसर है, मिनिस्टर है। हम उस वर्ल्ड ऑलमाइटी के बच्चे हैं। हमें नशा है कि हम भगवान के बच्चे हैं? नशा नहीं है, खुशी नहीं है। भल हम मुख से गाते भी हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, गाते हैं ना, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। मुख से हम गाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल भगवान से संबंध जोड़ते नहीं है, निभाते नहीं है, इसलिए हमें वो नशा भी नहीं है, प्राप्ति भी नहीं। तब तो मांगते रहते हैं, भक्ति में भगवान को याद करते हैं तो क्या याद करते? मंदिर में जाते हो, भगवान को क्या याद करते? मांगते ही रहते हो ना, कि हे भगवान, सुख दो, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद नहीं करते हो, फरियाद करते रहते हो। वरना दाता के बच्चे हम भिखारी क्यों है? कभी सोचते हो इस विषय पर? कोई राजा का बेटा, राजकुमार भीख मांगने निकले तो आप सोचेंगे ना, आश्चर्य लगेगा ना कि राजा का बेटा और भीख मांग रहा है। तो भगवान के बच्चे, दाता के बच्चे, सागर अखुट भंडार के बच्चे, पिता शांति का सागर, और हम अशांत क्यों है? पिता सुखदाता, हम दुखी क्यों है? पिता सदा पावन और हम विकारी पतित क्यों है? अंडरस्टूड है कि हमारा उस परमात्मा से कनेक्शन नहीं है, हमारा उनसे प्रैक्टिकल रिलेशन नहीं है, इसलिए हमें प्राप्ति नहीं है। तो अपने मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना, उनसे संबंध जोड़ना, उसको ही तो योग कहते हैं। आप सोचते होंगे कि दूसरा दिन हुआ, योग तो कोई सिखाता ही नहीं, सब ज्ञानी सुनाते हैं, या योग के नाम पर कोई क्रिया नहीं करनी है। योग मीन्स कनेक्शन, Yog means relation. आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना उसको योग कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि केवल अब मुख से गाने की जरूरत नहीं है, हमें दिल से स्वीकार करने की जरूरत है, मानने की जरूरत है, ये निश्चय करने की जरूरत है कि परमात्मा ही हम आत्माओं के अविनाशी असली माता पिता शिक्षक गुरु सखा बंधु स्वामी सर्वस्व है। हमें प्रैक्टिकल मन वचन कर्म से फॉलो करने की जरूरत है, उसको योग कहते। आपके शहर में पावर हाउस है लेकिन आप कनेक्शन नहीं करते हैं तो आपको बिजली मिलेगी? आपके पास लाखों रुपए हैं लेकिन मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है तो मुझे थोड़ी प्राप्ति होगी? प्राप्ति तो संबंध से होती है। आप अपनी प्रॉपर्टी का वारिस तो अपने बेटे को बनाएंगे ना? मान लो बाहर जोरदार बारिश हो रही है पर आप अपना लोटा उल्टा रखेंगे तो भरेगा? हाँ, हमारी बुद्धि विपरीत हो गई है। हमारी प्रीत परमात्मा से नहीं रही है इसलिए हमें प्राप्ति नहीं, हमारा कनेक्शन नहीं है, प्रैक्टिकल रिलेशन नहीं है, वो प्यार नहीं है इसलिए प्राप्ति नहीं है, इसलिए हम मांगते हैं। तो राजयोग में हमें भगवान से मांगना नहीं, हमें उनको यथार्थ रूप से जानना है, विवेक से पहचानना है, जीवन के सर्व संबंध जोड़ने हैं, उनको याद करना है, उनको प्यार करना है, उसको योग कहते हैं। वो कल्याणकारी है इसलिए उनका नाम शिव है, जिसको हम सभी सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। उनके अनेक कर्तव्यवाचक नाम है, अनेक गुणवाचक नाम है। हम उससे पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर, भोलानाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ कहते हैं ना? लेकिन हमें ये सारे नामों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम उनके मूल नाम को याद करते हैं, कल्याणकारी शिव, जिसको प्यार से हम यहां शिव बाबा कहते हैं। बाबा मींस पिता, गॉड फादर कहते हैं। परमात्मा हमारा पिता है, संबंध से याद करना, और ऐसे गुणों के सागर ऑलमाइटी परमात्मा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि नहीं करते हैं, वे हमें पतित से पावन बनाते हैं, विकारों से छुड़ाते हैं जो कोई इंसान नहीं कर सकता, जो स्वयं सदा पावन है वो ही तो हमें पावन बनाएगा, वो हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं और सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए परमात्मा का दिव्य कार्य है कलियुगी पतित दुनिया को सतयुगी पावन सृष्टि में बदल देना, अनेक धर्मों का अंत कर एक सत धर्म स्थापन करना। और ऐसा दिव्य कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं कलियुग के अंत और सतयुग के आदि के संधि काल संगम युग में। संगम युग, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय जो चल रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय चल रहा है, ये मोस्ट वैल्यूएबल समय है। कलियुग अंत और सतयुग आदि के बीच का संधि काल संगम युग, जब स्वयं परमात्मा आकर हम कलियुगी पतित मनुष्यों को संगम युगी पवित्र योगी बनाते हैं। जो पवित्र योगी आत्माएं उत्तम पुरुषार्थ करके सतयुग में देवी देवता बनते हैं। इसलिए वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य विश्व पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, और ऐसा कार्य करने के लिए वे सृष्टि पर आते हैं। मीन्स उनका भी कोई निश्चित निवास स्थान है जहां से सृष्टि पर आते हैं। और कल आप सबने समझा है कि ये सृष्टि हमारा भी घर नहीं है, है? हाँ? हम भी कहते हैं ना, अकेले आए हैं अकेले जाना है, कहते हैं ना। तो कहां से आए हैं, कहां जाना है? तो कल आपने ये समझा है कि ये सृष्टि हमारे लिए भी कर्म क्षेत्र है, हमारा असली घर भी परम धाम है, शांति धाम, जो पांच तत्व से पार है। परमात्मा भी शांति धाम के निवासी है, बाप और बच्चों का घर एक ही होता है ना, एक ही होता है ना, हाँ? लड़ने के बाद अलग होते हैं ना, असली घर तो एक ही होता है ना। तो हम आत्माओं का और हमारे पिता परमात्मा का असली घर एक ही है, शांति धाम। तब तो उससे ऊपर वाला कहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं तो कहां नजर जाती है, ऊपर जाते, इशारा कहां करते, ऊपर करते, और एक दो को कहते भी हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, याद कराते हो कि नहीं? हाँ, कोई पाप करके भी इस दुनिया की कॉर्ड से छूट जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऊपर वाले की कॉर्ड से नहीं छूटोगे, कहते हैं ना? तो परमात्मा परम धाम के निवासी है, कलयुग के अंत संगम युग में सृष्टि पर आते हैं, साधारण मानव तन में प्रवेश करते हैं, जिस तन को ब्रह्मा कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा भगवान नहीं है, ये ज्ञान ब्रह्मा का या ब्रह्मा कुमारी का नहीं है, ये ज्ञान शिव परमात्मा का है। तो ऐसे कल्याणकारी पिता परमात्मा को हमें कितना याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए, कितना याद करना चाहिए? बोलते नहीं हो? हमेशा पर हम इतना याद करते हैं, करते हैं नहीं, इसलिए बोलते नहीं थे है? आज जीवन में थोड़ा भी कोई सुख देते हैं, साथ निभाते हैं, मुसीबत में मदद करते हैं, उनको भी हम कहते हैं कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपकी याद हमें सदा आएगी, कहते हैं ना? तो जो सदा सुख देने वाला है, आत्मा का जो अविनाशी साथी है, जो कल्याणकारी है, जो हमें पतित से पावन बनाता है, जो हमारी डूबती जीवन नैया को पार लगाते हैं, उनको हमें कितना याद करना चाहिए? पर हम देह भान में आते हैं, इसलिए भूल जाते। इसलिए कल पहला पाठ पक्का कराया कि मैं आत्मा हूं। इसलिए अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद आएगी, देह भान में रहेंगे तो देह के मित्र संबंधी याद आएंगे, ये सीधा हिसाब है। तो हम 5 मिनट बहुत प्यार से और पूरी एकाग्रता से याद करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे, 1-2 से डिटैच होके बैठेंगे, टच नहीं करेंगे, आंखें स्वाभाविक खुली रहे, बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करके बैठेंगे तो सो जाएंगे, नींद नहीं करना है, अटेंशन से बैठना है। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रहे, सिर झुकाकर नहीं बैठना है, परमात्मा को याद करना श्रेष्ठ कर्म है, उन्नत मस्तक से हम याद करेंगे। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, तो आप मेरे मस्तक में देखेंगे, मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। हमें अभ्यास करना है शरीर को देखते हुए भी आत्मा को देखना है। शरीर से हम यहां बैठे हैं, बुद्धि से हम अपने असली घर शांति धाम में चले जाते हैं और मन की आंख से उस ज्योति बिंदु पिता को देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको याद करते हैं, प्यार करते हैं, उसको योग कहते हैं। तो हमें मन ही मन कैसे चिंतन करना है वो सजेशंस मैं देती जाऊंगी। आपको मुख से बोलना नहीं है, लेकिन जैसे मैं सजेशन दूं ऐसे ही मन में सोचना है, उस अनुभव में स्थित होना है। अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाइए। मैं आत्मा हूँ। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। एक अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। इस सृष्टि रंगमंच पर शरीर धारण कर मैं कर्म करती हूं, मेरे लिए ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर शांति धाम है। पिता परमात्मा भी शांति धाम के निवासी हैं। मैं मन की आंख से अपने असली घर को और प्यारे पिता को देख रही हूं। मुझ आत्मा के अति प्रिय हे परम पिता, अनेक जन्मों से मैं आपको खोजती रही हूं। दर दर भटकती रही हूं, लेकिन आपका सत्य परिचय मुझे कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। आप कितने कल्याणकारी हैं, जो स्वयं सृष्टि पर आते हैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा मुख से हमें सही ज्ञान देते हैं। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूं जो आज मुझे आपका सही परिचय प्राप्त हुआ है। आपके सत्य ज्ञान को प्राप्त कर अब मेरे मन का अंधकार समाप्त हो गया है। मेरी बुद्धि रोशन हो गई है। मेरा सद्विवेक जाग गया है। मुझे जीवन का सही ठिकाना मिल गया है। मुझे स्पष्ट है कि मैं कौन हूं और आप पिता कौन हैं। मुझे अपार खुशी हो रही है। और अब मेरा यही लक्ष्य है कि जिन गुणों के आप सागर हैं उन गुणों को मुझे धारण करना है। शांति के सागर हैं, शांति के अखूट भंडार हैं। आपकी संतान मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। आपकी याद से मेरा मन शांत हो जाता है। प्यार के सागर ओ शिव बाबा, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। आप ऑलमाइटी हैं, सदा पावन पिता है, जैसे ही मैं आपसे कनेक्शन जोड़ती हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली बनने लगती हूँ, मैं एम्पावर होती हूँ, मैं शुद्ध बनती जाती हूँ, मैं आत्मा हूँ, संतान हूँ, शुद्ध स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ।